اللہ پاک نے ہم تمام کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ علم کی نعمت ہے، یہ نعمت دوستو بزرگو اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتے، اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اور جس کی قسمت کو اللہ پاک چمکانا چاہتے ہیں، ایسے خوش قسمت انسانوں کو اللہ پاک یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. بعضے علاقے میں جب ہم جاتے ہیں تو ایسی نعمتوں کی قدردانی ہوتی ہے کہ پورے کے پورے ملک میں ایک بھی حافظ نہیں، ایک بھی عالم دین نہیں. بہت سال پہلے ہم لوگ سیارا لیون کے اندر گئے، ویسٹ افریقہ میں ہے، پہلی مرتبہ ہمارے ہندوستان کی جماعت پہنچی اور 70 لاکھ کا مجمع ہے، 70 لاکھ مسلمان تھے. اور تحقیق کے بعد پتا چلا کہ پورے کے پورے ملک میں 70 لاکھ مسلمانوں کی آبادی کے درمیان کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں، ایک بھی عالم دین. اس وقت کے اندر احساس ہوا کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے ہم تمام کو نوازا ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں، کہ پورے کے پورے ملک اس قرآن کی نعمت سے محروم ہے. اور دوستو بزرگو، یہ تو اس وقت کے اندر پتا چلا کہ چونکہ وقت لگ رہا تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو ہم نے فرض نماز پڑھ کر علیحدہ ہماری جماعت چلی گئی کہ بھئی ہم لوگ تو علیحدہ قرآن پاک سنیں گے اور سنائیں گے، کیونکہ ہمارے جماعت میں حافظ قرآن بھی تھے. تو وہ مقامی ساتھی کہنے لگے، بھائی آپ لوگ ہمارے ساتھ تراوی نہیں پڑھو گے؟ ہم نے کہا پڑھیں گے، لیکن آپ 8 رکعت پڑھتے، ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے، آپ الگ طرح کی پڑھیں گے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کر کے آئے ہیں کہ پوری زندگی رمضان المبارک میں نے قرآن پاک کی تراوی کو سنا ہے. تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم 10 دن کے اندر قرآن پاک کو ختم کر دیں. تو وہ کھڑے ہو کر بردستہ مجمع کے سامنے اعلان کر چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی کیا ہم سب بھی 20 رکعت پڑھیں گے؟ پورے مجمع نے کہا ہم بھی پڑھیں گے. بھائی ہم بھی 3 پارے کی طرح بھی ان کے پیچھے سنیں گے؟ پورے مجمع نے کہا کہ ہم بھی سنیں گے. پھر ہم کو کہنے لگے کہ آپ یہی جو آپ کے حافظ صاحب ہیں ان کو کہہ دو، وہی ہم کو قرآن پاک سنا. تو پہلے دن تو ٹھیک ہے، 40-50 کا مجمع تھا، ہمارے حافظ صاحب نے 3 پارے سنا دیے، لیکن دوسرے دن 500 کا مجمع آ گیا. ہم کو بڑا تعجب ہوا اور ہم نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، ہمارے علاقے کے اندر تو شروع میں قرآن پاک کے سننے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ 10-15-20 رمضان کے بعد تو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، پھر آخر عشرے میں اور بڑھ جاتی. آپ کے یہاں کل 50 تھے، آج 500 ہو گئے. تو بڑی عجیب بات، یہ جو اللہ کی نعمت اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہے. تو انہوں نے یوں کہا کہ ہمارے پورے ملک میں 70 لاکھ کی آبادی کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں، ایک بھی عالم دین نہیں. اور ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گئے کہ ہم تو علم طرح ہی پڑھتے ہیں، اگر ہم کو قرآن پاک کے سننے کا شوق ہوتا ہے تو کسی ریڈیو اور ویڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے تو ہم سنتے ہیں، لیکن کسی انسان کی زبان سے ڈائریکٹ ہم نے قرآن پاک کو نہیں سنا. اب یہ گزشتہ کے اندر 40-50 کا مجمع تھا، اس نے جا کر اپنے اپنے علاقوں میں کہا کہ اگر ڈائریکٹ کسی کی زبان سے قرآن پاک سننا ہے تو چلو مرکز پر ایک جماعت آئی ہے جو قرآن پاک کی تراوی سنا رہی ہے. تو یہ سن کر آج کل 50 کا مجمع تھا، آج 500 کا مجمع ہو گیا. تو دوستو بزرگو، میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر और हमारी मस्जिदों में अगर मैं और आप थोड़ा सा गिनती गिनेंगे और शुमार करेंगे, एक एक दो नहीं बल्कि बीसियों हाफिज कुरान हमारी मस्जिदों में मौजूद है। जब ये जमाते आती है तो बाजे जमाते आकर अपना चिल्ला लगाकर वापस चली जाती है, और वापस जाने के बाद जब इनको एहसास होता है कि हमने एक चिल्ला लगाया लेकिन हमारा अपना कुरान पाक तो सही नहीं हुआ, तो बुजुर्गों की तरफ से ये बात आई कि भाई जिस इलाकों में ये जमाते पहुंचे उस इलाके के हाफिज और आलिम अगर इनके साथ थोड़ा सा वक्त लगा लेवे तो कम से कम इनकी सूरह फातिहा और चार सूरतें तो सही हो जावे, जो जरूरी मसाइल है वजू गुसल के फराइज हो तो उनके सही हो जावे। तो रमजान के पहले हमारे अमीर साहब ने एक मरतबा ऐलान किया कि भाई जितनी जमाते आएगी आप तय कर लो कि अपनी मस्जिदों में हाफिज कुरान होंगे जिनके कुरान को सही कराएंगे। हमने कहा ठीक है। हम लोग बैठे मस्जिद व जमात के अंदर कि भाई हम भी फहरिस्त बना लेवे कि हमारी मस्जिद में कितने हाफिज साहब हैं। किसी ने कहा 10-15 हाफिज साहब है, हम इनको ऐलान कर देंगे, हम इनको जाकर बात कर लेंगे, एक आध घंटा वक्त लगाकर हमारे आने वाली जमातों के साथ वक्त देकर इनके कुरान पाक को सही कराएंगे। हमने कहा भाई अपने फहरिस्त तो बनाओ। अब फहरिस्त बने, हमारी अपनी मस्जिद की बात है, हमने फहरिस्त बनाई बनाई और चलते गए चलते गए, अल्लाह का एहसान हुआ कि हमारी मस्जिद में 110 हाफिज कुरान है। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत, अल्लाह पाक ने हमारे इस मुल्क में, हमारे इस सूबे को, हमारे एक एक जिले को, माशाल्लाह इतने ज्यादा उलमाए किराम का बाहर के मुल्कों में देखना बहुत मुश्किल है, कहीं एक कहीं दो कहीं पांच। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से ऐसी आम फिजा अल्लाह पाक ने बनाई है कि हर आदमी ये तमन्ना करता है कि मेरा बेटा हाफिज हो, मेरा बेटा आलिम हो, और आदमी इस लाइन की फख्र के ऊपर, अल्लाह का एहसान है कि लोग फख्र करते हैं दुनिया की लाइन से, लेकिन हमारे माँ बाप इस बात पर फख्र पर है कि अल्लाह का एहसान है कि मेरे चारों के चारों बेटे हाफिज कुरान है और आलिम दीन है। ये अल्लाह की नेमत। अब दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी नेमत अता फरमाई है और जिसके जरिए से अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की जिंदगी को बनाने को फैसला किया है कि इस दीन पर, इस शरीयत पर, इस अल्लाह के अहकामात पर कुरान पाक की बरकत से अल्लाह पाक कयामत तक के लिए फैसला कर चुके हैं कि जिसकी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात होंगे और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होंगे तो अल्लाह पाक सारी दुनिया में दुनिया और आखिरत की कामयाबी की अल्लाह पाक की तरफ से जमानत। अभी इस वक्त के अंदर हमारा तुम्हारा बैठ कर मुजागरा करना कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में कैसे जिंदा हो जाए। हर कच्चे पक्के मकान में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अल्लाह पाक कैसे दाखिल करे, और अगर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत हो जाती है और थोड़ी सी, हमारे मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हमारी दावत की मेहनत की तीन बुनियादें हैं। अल्लाह पाक ने दावत की मेहनत को चलाया है और जिसके नतीजे पर अल्लाह पाक ने ये पूरा बाग को लहलाया है, ये इसके नतीजे पर मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी दावत की मुबारक मेहनत की तीन बुनियाद, एक तो फरमाया फिकर, दूसरी जानो माल की कुर्बानी, और तीसरा मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी दावत की मेहनत की तीसरी जो बुनियाद है वो दुआओं का मांगना, कि फिकर के नतीजे पर अल्लाह पाक दुनिया में इस काम को चलाते। इसीलिए हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं लअल्ला का बाखिउन नफ्सक, ए नबी जी अगर ये लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए तो क्या अपने आप को आप भुला दोगे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गो, इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के निजाम को बदल दिया। कितने उलमा, कितने हुफाज, कितने पर्दे, कितने लोगों की जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम, एक जबरदस्त अल्लाह पाक ने एक जबरदस्त इसके जरिए से अल्लाह पाक ने दुनिया में इनकलाब को पैदा किया। इसलिए अल्लाह पाक ने माशाल्लाह हम तमाम को बहुत ऊंची जिम्मेदारी के साथ और बहुत आला नेमत के साथ अल्लाह पाक ने नवाजा है। अल्लाह पाक हमारी और हमारी नस्लों में ये नेमतों को मुंतकिल कर कर हमारी नस्लों की हिदायत का अल्लाह पाक सामान बना। माशाल्लाह मैं और आप इस वक्त के अंदर बहुत ऊंची और बहुत बड़ी नेमत के अल्लाह पाक ने मालिक बनाए। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, या यूहन्नास कद जाअकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम वशिफाउ लिमा फिस्सुदूर वहुदं वरहमतुल लिलमुमिनीन قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون। जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक की नेमत दे दी और जिसको अल्लाह पाक ने दीन और शरीयत की और अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत के बनाने की नेमत से मालामाल फरमाया, अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं فليفرحوا هو خير مما يجمعون, ये तो उन तमाम नेमतों से बढ़कर है जिसको दुनिया के लोग जमा करते। तो जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों, तो फिर एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत अता फरमाई और इसके जरिए से अल्लाह पाक दुनिया में दीन को जिंदा करते। यही तो नेमत है, यही तो कुरान हदीस की बातें हैं कि जिसके जरिए से दुनिया में दीन जिंदा हुआ। तो मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी दावत की मेहनत की बुनियाद तीन है, एक तो फिक्र और दूसरा अपनी जान और माल की कुर्बानी और तीसरा यूं फरमाया अल्लाह के सामने मांग। जब आदमी फिकर के साथ चलता है और इस बात की नीयत और इरादे के साथ चलता है कि मेरे अपने महल्ले में, मेरे अपने शहर में, मेरे अपने इलाके में, मेरे अपने सूबे में और मेरे अपने मुल्क में कोई बेदिनी के साथ जिंदगी ना गुजारे बल्कि 100% अल्लाह के अहकाम को अल्लाह पाक जिंदा कर दे, अगर इस मेहनत और नीयत के साथ आदमी चलता है तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो जज्बा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का है, अयुन कसुद दीन वाना हयुन, के दीन में कमी आ जावे और अबू बकर जिंदा रहे। दोस्तों बुजुर्गों, जब मैं और आप फिक्र के साथ चलेंगे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारी बरकत से एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को अल्लाह पाक दीन की जिंदगी अता फरमाएगा। और इसी का नतीजा है माशाल्लाह जितनी दीनदारी बढ़ रही है, आप बुजुर्गों की मेहनत आपकी कुर्बानी के नतीजे पर कि हमारे बच्चों बच्चों को दीन मिल रहा है, हमारे महल्ले के अंदर माशाल्लाह दीन को अल्लाह पाक जिंदा कर रहे और हमारी बरकत से अल्लाह पाक दुनिया के कितने बातिल को तोड़ेगा वो तो मैं और आप तस्वूर नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह पाक की तरफ से तयशुदा बात, अल्लाह पाक की तरफ से तयशुदा बात है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत का मकसद ये है कि अल्लाह पाक दीन इस्लाम को गलबा नसीब करे चाहे दुनिया के लोग नापसंद करें। और ये तो तय है, हर कच्चे पक्के मकान के अंदर अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को अल्लाह ही दाखिल फरमाएंगे। बस मैं और आप तो अल्लाह करे थोड़ी सी मेहनत के जरिए से जरिया बन जावे, वरना आज तक दुनिया में जितना भी बूट टूटा है और जितने भी बातिल को अल्लाह पाक ने तोड़ा है ये तो हक मेहनत के नतीजे पर है। हम लोग एक मरतबा जमात में चल रहे थे तो किसी ने हमको कारगुजारी सुनाई हमारे हाफिज पटेल, माशाल्लाह हम सब जानते होंगे कि हमारे मानिकपुर टकोली के हाफिज साहब जो इंग्लैंड में थे इनके मदरसे में हम गए तो वहां के साथियों ने सुनाया कि 1956 के अंदर पहली मरतबा हाफिज साहब इंग्लैंड के अंदर आए, पहली मरतबा 1956 में, और मकामी साथी आए इनको रिसीव करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, तो कोट पैंट सूट बूट टाई ये तमाम लिबास लेकर आए। हाफिज साहब तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलहक थे और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से चलते थे। जब वो इंग्लैंड के अंदर पहुंचे तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को मिलने के लिए गए और दुआ और मौलाना की नसीहतें कि वहाँ जाकर दीन की मेहनत का काम करना, इन तमाम फिक्रों के साथ पहुंचे। जब पहली मरतबा पहुंचे 56 के अंदर तो मकामी लोग आए और आकर हाफिज साहब को कहने लगे, हाफिज साहब अपने कपड़े बदल लो, अपने कपड़े चेंज कर लो। हाफिज साहब कहने लगे, भाई मेरे कपड़े तो मेले भी नहीं हुए, नापाक भी नहीं हुए। भाई आदमी कपड़े बदलता है तो मेले हो जावे नापाक। तो वहां के साथी कहने लगे, हाफिज साहब ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड यहाँ ये कुर्ते पायजामे नहीं चलेंगे, यहाँ तो ये सूट बूट टाई मोजे जूते ये पहनकर आपको हम ले जाएंगे। हाफिज साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो इसी बुजुर्गों के लिबास ही के अंदर दाखिल होऊंगा और अपना आप को जमाया। और आप ही साहब कहने लगे कि 1956 के अंदर मैं इंग्लैंड में पहुंचा। माशाल्लाह, हम जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर कैसी फैशन परस्ती और कैसी, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से जाल हक वज़हक अल बातिल, जब दुनिया में हक जिंदा होगा अल्लाह पाक दुनिया के बातिल को खत्म करेगा। अब आप ही साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत शुरू की। होते होते हमारे सुलेमान भाई मोमाया बम्बई के जो जिम्मेदार थे, वो एक मरतबा सुनाने लगे कि 1972 में हमारी जमात पहुंची इंग्लैंड में, और यही रमजान मुबारक के करीब का वक्त था। तो सुलेमान भाई मुमाया ने वहां के जिम्मेदार से पूछा कि भाई यहाँ कुरान पाक की तरह भी होगी या आलम तरह की होगी, इसलिए कि हर मस्जिद में तो नहीं होती, अगर आपकी मस्जिद में हो रही है तो हम तो यहाँ नमाज पढ़ेंगे, और अगर नहीं तो हमको ऐसी जगह ले जाओ जहां कुरान पाक की तरह भी होती। मुतवल्ली साहब ने कहा कि आप इंतजार करो, मगरिब के बाद देखेंगे। फिर वो तो बेचैन हो गए सुलेमान भाई मोमाया कि भाई अगर यहाँ तरावी नहीं होती तो हमको ले जाओ, चूंकि दूर दूर की मसाफत है। मगरिब की नमाज के बाद फिर से गए मुतवल्ली साहब के पास और जाकर यूं कहा कि मुतवल्ली साहब, क्या अगर यहाँ कुरान पाक की तरावी हो रही तो ठीक है, वरना हमको किसी ऐसी मस्जिद में पहुंचा दो जहाँ कुरान पाक की तरावी हो रही। तो मुतवल्ली साहब ने इनको बुलाकर यूं कहा, ये पहली सब के अंदर जो 15-16 बच्चे नजर आते हैं, ये सब के सब कुरान पाक के हाफिज है। 1956 के अंदर दावत की मेहनत शुरू हुई और 1972 ये 14-15-16 साल के दरमियान के अंदर ऐसी मेहनत हुई, एक ही मस्जिद के अंदर 15-16 बच्चों को अल्लाह पाक ने हाफिज कुरान बना दिया। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक की तरफ से निजाम ये है कि फिक्र करने की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक दुनिया में दीन को जिंदा करते हैं, और ऐसी दीनदारी को अल्लाह पाक की तरफ से कायम हुआ, और ऐसे अल्लाह पाक ने दुनिया की फिजा को बदल दिया कि जहां जहां हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत की मेहनत की इब्तिदा की और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और अल्लाह की तरफ दावत देने की इब्तिदा हुई, उस वक्त के अंदर कुफार मक्का यूं कहते थे, अजअल अलिहत इलाहु वाहिदा, इन तमाम माबूदों को छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत करना, ये तो बड़ी अजीब बात। लेकिन मेहनत हुई तो दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के बातिल को अल्लाह ने खत्म कर दिया, दुनिया में दीन को अल्लाह पाक ने जिंदा कर दिया, और ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से माहौल बनाया, ऐसा अल्लाह पाक ने माहौल बनाया कि कयामत तक के लिए अल्लाह की तरफ से फैसला हो गया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यकरबुल मस्जिदुल हराम बादा आमिम हादा, मुशरिक तो नापाक है, आज के बाद इस साल के बाद कभी भी हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया, बड़ा रहम फरमाया, और अल्लाह पाक की तरफ से एक दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से दुनिया में फिजा आम हो रही है। अब जरूरत इस बात की जरूरत है कि अल्लाह करे जैसे सहाबाए किराम और हुजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और खुलफाए राशिदीन के जमाने के अंदर अल्लाह पाक ने एक माहौल बनाया है, ऐसे माहौल के नतीजे पर दुनिया के अंदर अल्लाह के अहकामात को अल्लाह पाक जिंदा करे। हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जमाना है और फजर की नमाज के अंदर एक आदमी नहीं, पूरी मस्जिद भरी हुई है और एक आदमी गैर हाजिर थे। आपने सलाम फिरा कर देखा पूरी मस्जिद को और सलाम फिराने के बाद पूछा, क्या बात है, आज सुलेमान नजर नहीं आते, पूरी मस्जिद है, पूरा महल्ला है, और आपकी एक एक की निगेबानी के दरमियान के अंदर एक आदमी नजर नहीं आया। आपने फौरन नमाज के बाद ऐलान करके पूछा, क्या बात है, आज सुलेमान नजर नहीं आया। हालांकि दोस्तों बुजुर्गों, कैसी मेहनत के नतीजे पर 100% नमाज जिंदा थी, 100% अल्लाह के अहकाम जिंदा थे, एक आदमी नहीं आया, एक आदमी, ये फिक्र की बात है। मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारी दावत की मेहनत की बुनियाद फिक्र है, कि अगर आदमी फिक्र के साथ थोड़ी सी मेहनत कर लेता है तो अल्लाह पाक नमाजों को जिंदा करेंगे, अल्लाह के अहकाम को जिंदा करेंगे, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा होगी, और हर कच्चे पक्के मकान के अंदर अल्लाह के नबी के लाए दीन को अल्लाह पाक जिंदा करेंगे। तो एक आदमी की गैरहाजिरी फिर इतना नहीं कि चलो आपने पूछ करके छोड़ दिया, बल्कि हजरत शेख रहमतुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उनके घर गए और घर जाकर पूछा क्या बात है, आज सुलेमान नजर नहीं आते। तो घर में किसी वालिदा ने कहा कि भाई पूरी रात भर इबादत की तो घर पे नमाज पढ़ के सो गए। आपने कहा कि बेहतर होता कि ये फजर की नमाज मस्जिद में आकर अदा कर ले। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, इस दावत की मुबारक मेहनत से अल्लाह पाक ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि पूरी की पूरी आबादी और पूरी की पूरी मस्जिद के अंदर एक आदमी नहीं होते थे तो सहाबाए किराम और अमीरुल मोमिनीन और खुलफाए राशिदीन उसकी फिक्र में लग जाया करते थे कि भाई हमारी मस्जिद से एक आदमी गायब, ये फिक्र है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह पाक की तरफ से उमूमी इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, कबीले के कबीले इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हो गए, ताइफ का कबीला भी इस्लाम में आ गया। तो वहशी इब्न हर्ब ने लिख कर भेजा, ऐ अल्लाह के नबी क्या मेरे लिए भी कोई तौबा का रास्ता है, ऐ अल्लाह के नबी मेरे लिए भी कोई गुंजाइश है। एक आदमी वहशी इब्न हर्ब, हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं लाअल्ला का बाखिर नफ्स, ऐ नबी अगर ये लोग ईमान में दाखिल नहीं हुए आप अपने आप को हलाकत में डाल दो। लेकिन दोस्तों बुजुर्गो, एक एक आदमी की फिक्र हो रही और एक आदमी की जन्नत और जहन्नम का मसला दोस्तों बुजुर्ग आपको बेचैन कर रहा है। अब वहशी इब्न हर्ब ने कहला भेजा कि क्या मेरे लिए भी कोई तौबा है, मैंने तो तीन गुना बड़े बड़े किए हैं जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि जो आदमी शिर्क करे, जो आदमी नाहक किसी को कत्ल करे और जिसने जिना किया है उसको तो अल्लाह पाक दुगनी सजा देगी। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, हालांकि बोलो आपके चचा के कातिल हैं, चचा को कत्ल करने वाले, लेकिन हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को अल्लाह पाक ने कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना बना दिया कि भाई अगर इस लाइन की फिक्र होगी तो अल्लाह पाक दुनिया में दीन को जिंदा करेंगे। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी पर अल्लाह पाक की तरफ से कुरान पाक की आयत उतरी इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिह, अगर तौबा कर ले, ईमान में दाखिल हो जावे और अमल सालिह करे तो अल्लाह पाक इनके गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। अब हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो कि अल्लाह पाक की तरफ से आयत आ गई। अब वहशी इब्न हर्ब को कहला भेजा तो फिर वहशी इब्न हर्ब ने कहा अल्लाह के नबी इसमें तो तीन शर्तें, इल्ला मन ताब, तौबा करे, ईमान में दाखिल हो और अमल सालिह करे। मैं तौबा करके ईमान में दाखिल हो गया लेकिन अमल करने का मौका ना मिला। अब देखो कयामत तक के लिए अल्लाह पाक की तरफ से आयतें उतरना एक तय था, तो अल्लाह पाक ने वहशी इब्न हर्ब के जरिए से ये बात कि अल्लाह के नबी इसमें तो तीन बातें हैं, अब अल्लाह पाक की तरफ से दूसरी आयत आई कि जो शिर्क करेगा उसकी तो माफी नहीं होगी, उसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको माफ कर देंगे। फिर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहला भेजा, फिर वहशी इब्न हर्ब की तरफ से बात आई अल्लाह के नबी इसमें तो अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मशीयत है, अगर अल्लाह पाक ने नहीं चाहा तो मेरी तो फिर तो अटक जाएगी। फिर अल्लाह पाक की तरफ से आयत आई बुलिया इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम, एक एक आदमी के लिए अल्लाह पाक की तरफ से प्यारे नबी की बेचैनी को अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान किया। दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारी दावत की मेहनत की बुनियाद है कि अगर आदमी थोड़ी सी फिक्र कर लेता है तो इसकी फिक्र के नतीजे पर अल्लाह पाक पूरे माहौल को अच्छे से अच्छे और पूरे माहौल को दीनदार बना देते हैं और उसके लिए हमारी फिक्रें काम करती हैं। हम लोग जहाँ सूरत में रहते हैं, हमारे अमीर साहब उस वक्त के अंदर गुलाम भाई, एक मरतबा एक इलाके वाले आकर कहने लगे अमीर साहब आप एक मस्तूरात की जमात दो, तीन दिन की जमात। अमीर साहब ने कहा ठीक है भाई, तीन दिन की जमात बनेगी तो आपके वहाँ भेज देंगे। अब ये जमात गई तीन दिन की जमात और मस्तूरात की जमात काम करके वापस आ गई। फिर 15-20 दिन के बाद वो इलाके वाले वापस आए और आकर कहने लगे अमीर साहब दूसरी जमात मस्तूरात की हमको दे दो। अमीर साहब ने कहा भाई हमारे यहाँ तो महीने में 2-3 जमातें बनती है और 36 देहात है, अगर आपको देते रहेंगे तो फिर दूसरे देहात वालों का नंबर कब लगेगा। उसने कहा आमिर साहब मैं आपको कारगुजारी सुनाऊं, क्या बात हो गई। बोले हमारे यहाँ 50 घर है जिस देहात के अंदर ये जमात गई थी। बोले 50 देहात 50 घर है मुसलमानों के और 100 बालिगात, हर घर के अंदर दो केवरेत पकड़ के। उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 बहनें हमारे यहाँ मौजूद। आपकी ये जो 3 दिन की जमात आई और उसने मेहनत की तो 3 दिन की बरकत से 50 बहनों को अल्लाह पाक ने पर्दे की तौफीक अता फरमाई, 50 बहनें पर्दे में आ गई। अगर आप दूसरी जमात भेज दो तो हमारी दूसरी 50 बहनें भी पर्दे में आ जावे तो हम 100% ये कह सकते हैं कि हमारे गांव के अंदर पर्दा जिंदा हो गया। अब अंदाजा लगाओ दोस्तों बुजुर्गों कि कितनी मेहनत, कितनी कुर्बानी, कितनी फिक्र, लेकिन बुजुर्गों की तरफ से कि जब आदमी कुर्बानी देता चला जाता है तो अल्लाह पाक की तरफ से वल्लजीन जाहदू फीना, जो जितना मुजाहिदा करता रहेगा अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत आम होती रही। तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारा अमीर साहब सुनाते रहे गुलाम भाई कि मैंने दूसरी जमात भेजी और दूसरी जमात के भेजने के बाद फिर वहां के लोगों ने आकर यूं कहा अमीर साहब अल्लाह का एहसान हो गया कि तकरीबन 70-80 मस्तूरात पर्दे में आ गए। ये कोई मामूली चीज नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से। हमारे मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग एक मर्तबा निजामुद्दीन में गए 1987 में, और माशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान जमा होता है, हर सूबे की कारगुजारी होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास, तो सबने उठ उठ कर अपनी कारगुजारियां सुनाई। माशाल्लाह हमारी ये दो मशवरे के दरमियान के अंदर 4 महीने की इतनी चिल्ले की, इतनी बैरून की, इतनी मस्तूरात की, इतनी जमात गई। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में यूं कहा कि देखो भाई हम तो ये चाहते हैं, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बात सुनाई कि एक जमात अल्लाह के रास्ते में गई और अल्लाह के रास्ते में जाने से पहले मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुसाफा करने के लिए गए। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा भाई आप अल्लाह के रास्ते में जाते हो क्या नीयत से जा रहे, आपकी नीयत क्या है अल्लाह के रास्ते में जा रहे। माशाल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा और इतनी मेहनत है और इतने लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमारा कोई हदब होना चाहिए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस जमात को बुलाकर पूछा कि भाई तुम्हारी नीयत क्या है। जमात के 10-12 साथी बैठे हुए, पहले साथी ने यूं कहा हजरत मेरी नीयत ये है कि मैंने देखा कि जमात में जाकर लोग नमाजी बन जाते, होता है ना माशाल्लाह कि जो बेदीनी के साथ जिंदगी गुजारते हैं इस 40 दिन और चिल्ले की और 4 महीने की बरकत से सबसे पहले जो इनाम अल्लाह पाक की तरफ से मिलता है अल्लाह पाक उसको नमाज की तौफीक अता फरमा देते। तो उसने यूं कहा कि मेरी नीयत ये है कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाकर नमाजी बन जाऊं। दूसरों को पूछा भाई तुम्हारी क्या नीयत है, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर बनी इसराइल की नबियों की तरह अल्लाह पाक दुआओं को कबूल फरमाते, मेरे कुछ मसले अटके हुए हैं तो मैं अल्लाह के रास्ते में जाकर दुआ मांगकर अपने मसले को हल करा दूं। तीसरे को पूछा भाई तुम्हारी क्या नीयत है, तीसरे ने कहा भाई मेरी तो कोई नीयत नहीं। मेरे दोस्त ने कहा कि चल चिल्ला मार के आवे, होता है ना आदमी। हम लोग एक मर्तबा उमरा करने के लिए गए, हमारे साथ 5-15 आदमी हमारे इलाके के थे, रात के 12-1 बजे पहुंचे। एक साथी आकर कहने लगा मौलाना चलो जल्दी से उमरे को निपटा ले। अरे भाई उमरा निपटाने की चीज है, उमरा तो कोई करना, तो भी क्या करेंगे। मैं क्या आराम से सुबह में फजर की नमाज पढ़ेंगे, रात को आराम करेंगे, फिर इत्मीनान से जब फ्रेश हो जाएंगे तब जाएंगे। ऐसे वो तीसरे नहीं हूं कहा कि भाई मेरी तो कोई नीयत नहीं थी। मेरे दोस्त ने कहा चल चिल्ला मार कर आवे, तो मैंने कहा चलो मैं भी चिल्ला लगा लूं। लोगों ने अलग अलग, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कयामत तक के लिए हम तमाम को दावत की मेहनत के खुलासे पर दुनिया में क्या नीयत करके आदमी को निकलना चाहिए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम ऐसी छोटी छोटी नीयतें मत करो कि मेरी नमाज सही हो जावे, मेरे मसले अटके हुए हैं, मेरे दोस्त ने गया तो मेरी तो कोई नीयत ही नहीं। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो पहले तो अपनी इस्लाह की नीयत नहीं करता, वहां जाकर नमाजी बनाएंगे, वहां जाकर जमातें निकालेंगे, वहां जाकर पर्दे को जिंदा करेंगे, अपनी इस्लाह की नीयत नहीं करता। और दूसरे की इस्लाह का ये मुकल्लफ नहीं है, दूसरों की इस्लाह की मेहनत का तो मुकल्लफ है, लेकिन दूसरों को हिदायत मिल जावे, अरे बोलो इसका मुकल्लफ है नहीं, वो तो अल्लाह के हाथ। तो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग 1995 में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे मौलाना इस्माइल साहब के साथ, तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अव्वल आदमी अपनी इस्लाह की नीयत नहीं करता तो इसकी इस्लाह नहीं होती, और दूसरों की इस्लाह की नीयत करके जाता है ये दूसरों की इस्लाह का मुकल्लफ नहीं। भाई दूसरों की इस्लाह की मेहनत करने का यह मुकल्लफ है, लेकिन दूसरों को हिदायत मिल जावे तो अल्लाह की तरफ। फिर हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया इन्नक ला तहदी मन अहबबत, ए नबी जी आप जिसको चाहेंगे उसको हिदायत नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह जिसको चाहेंगे बोलो उसको हिदायत अल्लाह पाक देंगे। तो उसने कहा, तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में यूं कहा कि भाई देखो ऐसी छोटी छोटी नीयतें ना करें, मेरी नमाज सही हो जावे, मेरे मसले हल हो जावे, बल्कि मेरा दोस्त गया तो मैं भी चल गया नहीं, बल्कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से ये चाहा जाता है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ करके गए थे दोबारा उम्मत में इस सतह का दीन जिंदा हो जावे। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दावत की मेहनत करते करते दीन की जिस सतह पर छोड़ करके गए थे उम्मत में दोबारा उस सतह का दीन जिंदा हो जावे। फिर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक आदमी भी बेनमाजी नहीं था, अरे बोलो कोई बेनमाजी था? एक औरत भी बगैर पर्दे के नहीं, एक आदमी भी अल्लाह के अहकाम को तोड़कर जिंदगी गुजारने, जहां तक हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह पाक ने ईमान और इस्लाम को फैलाया, ऐसा प्यारा माहौल बनाया था कि एक आदमी भी झूठ बोलने वाला नहीं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हमारी इस दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से इस बात को चाहा जाता है कि भाई 100% अल्लाह के अहकाम जिंदा हो जावे और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके जिंदा हो जावे और हर कच्चे पक्के मकान के अंदर अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को अल्लाह पाक जिंदा कर दे। तो हम लोग जब 1987 में गए तो मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसी के साथ यूं कहा कि देखो भाई तुम्हारी कारगुजारी तो बहुत अच्छी कि 4 महीने की 12 जमाते, 15 जमाते, 25 जमाते, बैरून की 5 जमाते, मस्तूरात की इतनी जमाते, अब हम तो ये चाहते हैं। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हम तो अब ये सुनना चाहते हैं कमियत की तो बहुत कारगुजारी हो गई, कैफियत की कारगुजारी में ये सुनना चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई सूबा है कि जहां पूरा दीन नहीं सिर्फ नमाज जिंदा हो गई हो। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मजमे से खिताब किया, अब तो हम ये सुनना चाहते हैं कि 60-70 साल हो गए थे तब 1987 में कि अब तक के अंदर कोई सूबा ऐसा बतला दे खड़ा होकर कि हजरत हमारे सूबे के अंदर 100% नमाज जिंदा हो गई, पूरा हिंदुस्तान जमा है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, और तकरीबन 700-750 का मजमा होता था, हर इलाके से 10-15 का कोटा था। अब उसके दरमियान के अंदर मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम के दरमियान के अंदर कि भाई कोई सूबा खड़ा होकर ये बतला दो कि भाई हमारे यहाँ 100% नमाज जिंदा हो गई, पूरा का पूरा मजमा खामोश। फिर मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा भाई कोई सूबा नहीं बतला सकता, कोई बड़ा शहर ही बतला दो, अहमदाबाद है, सूरत है, हैदराबाद है, मद्रास है, दिल्ली है, कोई बड़ा शहर खड़े होकर बतला दो कि हमारे यहाँ 100% नमाज जिंदा हो गई, पूरा मजमा खामोश। फिर आपने तीसरी बात ये कही अच्छा भाई कोई बड़ा सूबा या कोई बड़ा शहर नहीं बतला सकते, कोई बड़ा कस्बा ही बतला दो। देखो ये फिक्र की बात, कितने साल से दावत की मुबारक मेहनत का काम हो रहा है, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों अभी तक हम 100% तक नहीं पहुंचे, अभी तक अपनी मंजिल तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन इंशाल्लाह चलते रहेंगे तो बोलो अल्लाह पाक हम तमाम को भी मंजिल तक पहुंचा देंगे। अरे पहुंचाएंगे इंशाल्लाह, पूरी यकीन है, पूरा अल्लाह की जात से उम्मीद है, बस हम मेहनत करते रहे। हमारे एक साथी कहने लगे, किसी ने जाकर हमारे किसी बुजुर्ग को पूछा कि इतने साल हो गए और अभी तक कोई खातिर खा जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही। तो बड़ी अजीब मिसाल देकर यूं कहा, आपको मालूम नहीं मक्के की पूरी जिंदगी और मदीना मुनव्वरा की 2 साल जिंदगी, इन 15 साल की मेहनत पर 313 तैयार हुए थे। 15 साल में कितने? 313। मिसाल देकर यूं कहा कि हर साल में 20 की एवरेज पड़ी। भाई बदर के अंदर कितने थे? 313। लेकिन उसके बाद आगे चले तो सुलह हुदैबिया तक कितने पहुंच गए? 1000 का मजमा हो गया। अब वो 3 साल के अंदर बोले 700 का मजमा बढ़ गया। फिर आगे चले तो फतेह मक्का के दिन 10,000 का मजमा हो गया, बिल्कुल 2 साल के अंदर। और यहां तक कहा कि तबूक के मौके पर 30,000 का मजमा था। 8 के अंदर सन हिजरी 8 में 10,000 का मजमा और सन हिजरी 9 के अंदर कितना हो गया? 30,000। तो 20,000 बढ़ गए। और हज्जतुल विदा के मौके पर बोलो 1,25,000 का मजमा हो गया। तो बोले स्टार्टिंग के अंदर तो आहिस्ता होता है, फिर इतनी तेजी के साथ गाड़ी चलेगी कि अल्लाह पाक की तरफ से जो वादे हैं और अल्लाह पाक की तरफ से जो यकीन है, वल्लदी अरसल रसूलहू बिल हुदा, हम अभी आहिस्ता चलते हैं, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए मेहनत करके और आप थके हुए, आपका चेहरा भी गोबर आलू दे, आपके कपड़े भी गोबर आलू दे, आपकी बेटी प्याला पानी का लेकर आगे बढ़ी और अब्बा जान के चेहरे को धुला कर रोती है, ऐ अब्बा जान आप इतनी थकान और इतनी मेहनत करते हैं। तो अब्बा जान ने कयामत तक आने वाले इंसानों को कितनी प्यारी बात बतलाते हुए आपने फरमाया, ए मेरी बेटी एक दिन आएगा कि हर कच्चे पक्के मकान के अंदर तेरे नबी के लाए हुए दीन को अल्लाह पाक दाखिल करेगा। ये तो तय है, हमारी मेहनत जाय नहीं जा रही, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह पाक की तरफ से भी काम बहुत बाकी। हमारी एक जमात, हम लोग वहां थे निजामुद्दीन में बैठे थे, बंबई की एक जमात अफ्रीका के किसी मुल्क में जाकर आई, और जमात के साथी तो बिल्कुल नए ऐसे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं, भाई जो तैयार हो गया, जिसके 4 महीने 2 मरतबा लग गए, अब वो आपस में बैठ करते करके जमात को रवाना कर। वो जमात ऐसी थी जिसमें कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं, कोई अरबी जानने वाला नहीं। अब वो होते होते किसी देहात में पहुंचे, तो वहां तो मस्जिद मदरसा भी नहीं। अब ये तय है, आज सुबह में हमने माशाल्लाह अपनी यहाँ की कारगुजारी सुनी, जोनों की जमातें जो भी इस वक्त में चल रही है, कि भाई कहाँ ये जमात कहाँ ठहरेगी? तो कहते हैं कि ऐसे इलाकों में जहां मस्जिद ना हो, मदरसा ना हो, ठिकाना ना हो, तो भाई कहाँ ठहरेगी? भाई मस्जिद में ठहरने की जगह है, लेकिन मस्जिद भी नहीं, मदरसा भी नहीं। अब इनको बुजुर्गों ने कहा टेंट लगाकर ठहरो। पहले तो स्टार्टिंग के अंदर तो आदमी भाई टेंट लगा कर कैसे ठहरेंगे, लेकिन अब तो माहौल बन गया। अरे बोलो जितनी दवाई बेचने वाले आते हैं वो किस में बेचते हैं, और कितने बड़े कपड़े के थान ले लेकर और कपड़े के, अब उनकी दुकानें नहीं होती, लेकिन टेंट लगाकर कई दिनों तक वो बेचते रहते। तो हमारा कि भाई टेंट में जाकर अगर हमारी जमातें ठहरेगी और वहां अजान नमाज को जिंदा करेगी और वहां जाकर आज सुबह में एक साथी ने सुनाया कि हमने चिल्ले के दरमियान के अंदर 1500 ऐसे मुसलमानों की मुलाकात की कि जिनकी मुलाकात का कोई निजाम नहीं। और क्या हुआ? बोले हमने 130 आदमी का कलमा सही करवाया। कोई मामूली चीज है? अरे बोलो, हम तो माशाल्लाह माहौल में रहते हैं, इसलिए हमें एहसास होता है कि भाई तो सारी दुनिया में दीन फैल चुका। हम लोग भी बहुत मुतमईन थे, हमारे सूरत के अंदर बहुत इत्मीनान था कि भाई मदारिस भी है, मकातिब भी है, दारुल उलूम भी है, और चारों तरफ से फजर में उठते हैं तो अजान की आवाज आ रही है। लेकिन एक मरतबा हमारे यहाँ 18 किलोमीटर कड़ोदरा 4 रास्ता है, वहां की मस्तूरात की जमात आई। मस्तूरात की जमात 3 दिन काम करके चली गई, फिर वहां के साथी आकर कहने लगे मौलाना कारगुजारी सुनावे। भाई सुना तो क्या हुआ? बोले इसमें दो बहनें ऐसी थी, माशाल्लाह पांच बहनों की जमात होती है, पांच जोड़े, इसमें पांच बहनें घरों में रहती है, इनके मर्द मस्जिदों में ठहरते। बोले वो दो बहनें हमने जोर की तक तालीम वगैरह सीखने सिखाने का अमल किया, उसके बाद मकामी जिसके घर में ये जमात ठहरी थी उस बहन ने कहा चलो हम वजू कर ले और नमाज पढ़ ले। तो बाकी बहनें तो जल्दी वजू में लग गई, दो बहनें आकर कहने लगी कि थोड़ा हमको भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन आपको पूछते हैं कि भाई हमको वजू नहीं आता, आप हमको थोड़ा सा वजू सिखला दो ताकि हम भी हमारी बहनों के साथ वजू कर ले। फिर बोले हमने वजू इनको सिखलाया। फिर वो बहनें दोनों आकर कहने लगी मकामी जिसके घर के अंदर ये जमात ठहरी थी कि भाई हमको तो नमाज भी नहीं आती, हम तो 40-50 साल से दूर के इलाके से आकर कड़ोदरा बसे हैं और हम तो भैंसे पालते हैं और इनकी खिदमत में हमारा वक्त लगता है, हमारे शोहर ने कभी हमको सिखलाया नहीं, ना हमने जिंदगी में कभी नमाजें पढ़ी है, तो आप हमको नमाज भी सिखला दो। तो वो मकामी साथी आकर कहने लगे मौलाना हम तो हुस्ने जन में चल रहे कि भाई हमारे यहाँ तो माशाल्लाह इतने मदरसे, इतने मकातिब, इतने मस्जिद, इतने अजान है, लेकिन हमारे 18 किलोमीटर दूर के ऊपर ऐसी बहनें रहती है कि जिन्होंने जिंदगी में कभी वुजू भी नहीं किया, कभी नमाज भी नहीं पढ़ी। हमारे यहाँ भी हमारे मौलाना यूनुस पूना वाले एक मरतबा डाबेल में आए, डाबेल के मदरसे में हमारे गुजरात का इज्तेमा, मौलाना यूनुस पूना वाले कहने लगे, हालांकि पूना के अंदर एक वक्त के अंदर 100-150 जमाते आज भी रहती, एक साथ 100-150 जमात। तो मौलाना यूनुस पूना वाले एक दिन कहने लगे कि भाई हम लोग हमारे महल्ले में गश के लिए गए, और मालूम है पहले जब गश में जाते थे तो कलमा सुनते थे, सुनाते थे हमारे जितने बुजुर्ग ने दी, तो भाई मुतकल्लिम ने भी कलमा सुनाया और सामने वाले जिससे मुलाकात करते उससे भी कलमा सुन लेते। मौलाना यूनुस पूना वाले कहने लगे कि मैं अपनी चांद तारा, चांद टेकरी या चांद तारा क्या है पूना के अंदर, मैं अपनी उस गली के अंदर गश की नियत से गया और एक हाजी साहब की मुलाकात हुई, मैंने अपना कलमा सुना दिया और मैंने हाजी साहब को कहा आप भी कलमा पढ़ो, तो हाजी साहब कहने लगे मेरे को कलमा नहीं आता। मौलाना यूनुस पूना वाले कहने लगे कि मैं समझा कि भाई ये तो कहीं बाहर रहते होंगे, हमारे यहाँ तो बयक वक्त के अंदर 100 जमाते चल रही और इतनी दीनदारी, इतने लोगों ने चिल्ले 4 महीने लगाए, इतने हाफिज और आलिम है, और ये तो हो नहीं सकता है कि हमारी गली के अंदर। तो मैंने इनको पूछा हाजी साहब से, हाजी साहब कहाँ रहते हो? हाजी साहब ने कहा मैं तो पूना में रहता हूँ। तो मौलाना कहने लगे कि मैंने तस्वुर किया कि कहीं किनारे पर रहते होंगे, पहले तो यही था कि पूना के नहीं होंगे, लेकिन जब वो हाजी साहब ने कहा कि मैं तो पूना में रहता हूँ तो फिर ख्याल आया कि कहीं किनारे पर रहते होंगे। फिर मैंने पूछा हाजी साहब पूना में कहाँ रहते हो? बोले इसी हलके में रहता हूँ। फिर मौलाना का तस्वुर कि हो सकता है कि आजकल रहने के लिए आए हो, कब से यहाँ रहते हो? बोले मेरी तो पैदाइश भी यहाँ हुई है। फिर कहाँ रहते हो? बोले इसी गली में रहता हूँ, यही मरकज वाली गली के अंदर रहता हूँ। फिर मौलाना यूनुस साहब कहने लगे मेरे पैरों तले जमीन सरकने लगी कि मैं हुस्ने जन के साथ हूँ कि मेरे महल्ले में, मेरे शहर में, मेरे इलाके के अंदर माशाल्लाह 100% दीन जिंदा हो गया, लेकिन अपनी गली के अंदर एक हाजी साहब को कलमा भी याद। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहली जमात पहुंची और जमात में जाकर मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सिखाया था कि भाई आप जाकर दुआ की गुजारिश करना बुजुर्ग के पास तो यही होता है। फिर क्या करते हो? बोले हम ये करते ये करते ये करते गश भी करते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते। तो कब गश करोगे? बोले शाम को करेंगे। तो ये जमात तो गश में निकली, लेकिन मौलाना ने अपने एक साथी को कहा कि आप भी इनके साथ गश में चलो, जाकर देखो तो सही ये क्या करते। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो जमात शुरू की है और जो एक मेहनत शुरू की है तो भाई देखो तो सही क्या हो रहा है। अब ये जमात तो वही कि भाई कलमा सुना रही है और लोगों का कलमा सुन रही है। तो बहुत से ऐसे साथी मिले, थाना भवन के अतराफ की बात हो रही, वो पहली इब्तदाई जमातें थी, और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक साथी को कहा जाओ तुम भी इनके साथ। जब जाकर उन्होंने पूरा देखा कि बहुत से साथियों को इन्होंने यूं कहा कि कलमा सुनाओ, तो हमारे हमारे थाना भवन के अंदर और खानकाह के अतराब के अंदर रहने वाले और बहुत बड़े यूपी के इदारे में, माशाल्लाह कितना बड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सो को कलमा याद नहीं था। फिर मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह इनको बिठाया, उनसे पूरी मालूमात की, फिर इनको कुछ 2-5-10 रुपए देकर यूं कहा मेरी तरफ से दावत कबूल करके खाना खा लो। फिर इनके यहाँ कि भाई हमारे अतराब के रहने वाले, हम ये तो हुस्ने जन के साथ चल रहे कि माशाल्लाह सब 100% दीन पर आ गए, लेकिन जब दोस्तों बुजुर्गों घुसेंगे अंदर दाखिल होंगे तब पता चलेगा कि हमारे इलाकों में भी बहुत सी मेहनत करने की जरूरत। अरे बोलो है कि नहीं? अरे भाई हो, आज हमको सुबह में महसूस हुआ कि माशाल्लाह इतनी जमातें काम कर रही है, लेकिन एक जमात आकर यूं कहती है हमने, हमको ऐसे आदमी मिले 130 आदमी के जिनको कलमा याद नहीं था, हमने बड़ी मेहनत के साथ इनको कलमा सिखलाया। तो मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे मजमे के सामने ये पूछा, अच्छा भाई कोई बड़ा सूबा नहीं, कोई बड़ा शहर नहीं, कोई बड़ा कस्बा ही ऐसा बतला दो कि जिसके अंदर नमाज जिंदा हो गई। बड़े कस्बे हैं तो पूरा हिंदुस्तान खामोश। फिर मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अली ने पूछा, अच्छा भाई किसी इलाके के अंदर कितने फीसद नमाज जिंदा हो गई, जरा खड़े होकर बतला दो। तो एक कर्नाटक के देहात के एक आदमी खड़े होकर कहने लगे, मौलाना हमारे यहाँ 50 घर है, 100 बालिग मर्द है, हमारे यहाँ 90 आदमी नमाज पढ़ते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे गांव में 90% नमाज जिंदा हो गई। फिर मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अली ने फरमाकर यूं कहा कि देखो हम हाथी की चाल न चले बल्कि हम घोड़े की चाल चले। किसकी चाल न चले बोलो? हाथी की चाल न चले। हाथी क्या करता है कि थोड़ा सा चलेगा, पीछे मुड़ कर देखेगा, खुश होगा, ओहो माशाल्लाह मैं तो बहुत चला। और घोड़ा 500 किलोमीटर चल के आया, लेकिन आगे 1000 किलोमीटर बाकी है, तो उसकी निगाह अपनी मंजिल पर होगी, अभी काम कितना बाकी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों इस वक्त के अंदर जरूरत इस बात की है, माशाल्लाह बुजुर्गों की रहबरी की जरूरत है कि भाई पूरी दुनिया बातिल की मेहनत पर लगी हुई है, और मेहनत का नतीजा तो ये है कि अगर सही मेहनत होगी तो सही नतीजे निकलेंगे और गलत मेहनत होगी तो गलत नतीजा निकलेगा। तो मैं आपको सुना रहा था, हम लोग निजामुद्दीन में बैठे और बंबई की एक जमात अफ्रीका काम करके आई, उसने आकर यूं कहा कि मौलाना हमारी जमात जब पहुंची, अब मैंने कहा कि अंग्रेजी दा भी नहीं, अरबी दा भी नहीं, अब वो देहात में माशाल्लाह चलते चलते एक जगह पहुंचे जहां मस्जिद नहीं मदरसा नहीं, तो चौराहे पर बैठ गए और मुसलमानों को तहकीक किया कि भाई मुसलमान कहाँ रहते, इशारे से कलमा पढ़ने वाले दाढ़ी कुर्ता पैजामा। तो कुछ लोग जमा हो गए बड़े बुड्ढे, अब इनके सामने इन्होंने इशारतन जो कुछ हो सकता था टूटी फूटी अपनी जुबान के अंदर उन्होंने दावत देना शुरू की। तो वो जमात हमको कारगुजारी सुना रही थी कि ये जमात तो अभी इस वक्त के अंदर दावत में लगी थी और कुछ लोग इनके इर्द गिर्द जमा हुए थे और अपनी टूटी फूटी जुबान के अंदर कलमा और दावत और इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दे रहे थे। बड़ी दूर से एक यूरोपियन औरत दौड़ते हुए आई और आकर उसने यूं कहा कि तुम सब हिंदुस्तान से आए हो ने, और तुम निजामुद्दीन से 4 महीने की नियत से आए हो ने। फिर अंग्रेजी में उसने यूं कहा कि तुम 10 साल लेट हो गए, बोले तुम इस इलाके को छोड़ दो, इस इलाके के अंदर 10 साल से हम लोग मेहनत करते हैं और हमने यहाँ पर इतनी मेहनत की है कि अतराब के 125 किलोमीटर के दरमियान के अंदर कोई एक मुसलमान भी बाकी नहीं है ईमान पर, ये सब के सब तो मुर्तद हो गए। आप 125 किलोमीटर के पास जाओगे वहाँ आपको मुसलमान मिल जाएंगे, वरना हम यहाँ 10 साल से मेहनत करते। और फिर यूँ कहने लगी जमात को कि तुम तो चार महीने के लिए जाए न, हम तो फैसला करने की नीयत से आए हैं, 10 साल हो गए और हमने तय कर दिया है कि अतराब के अंदर ऐसी मेहनत करेंगे कि किसी एक को भी ईमान पर बाकी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में ऐसी मेहनतें हो रही है, हम गफलत में ना रहे दोस्तों। और इसका नतीजा हक मेहनत होती है। तो मैंने आपको सुनाया कि हमारे अमीर साहब को कहा कि आपकी तीन दिन की जमात की बरकत से 50 मस्तूलात पर्दे में आ गई, आप दूसरी जमात भेज दो ताकि अल्लाह करे 100%। लेकिन जहां मेहनत नहीं होती वहां दोस्तों बुजुर्गों ये हाल होते। तो हम लोग तो सियारा लियोन के अंदर गए और मैंने इनको पूछा कि भाई आज 500 आदमी आ गए, तो कहने लगे आज तक हमने कुरान पाक को टेप रिकॉर्ड से और इससे और आलात के जरिए से सुना है, डायरेक्ट किसी मुसलमान की जुबान से नहीं सुना। फिर नमाज के बाद हमने सबको जमा किया और हम लोग गढ़ा मदरसे की गढ़ा से गढ़ा इज्तिमा से हम लोग पहुंचे थे। तो वहां हमने तहकीक की कि 125 घर है और 125 उलमा है, 125 घर है और 125 उलमा है, और उस पूरे मुल्क में 70 लाख की आबादी के अंदर कोई आलिम। फिर हमने बैठ करके इनके सामने पूरी कारगुजारी हिंदुस्तान की, जिस इलाके से आए हैं, दावत की मेहनत पर अल्लाह पाक ने क्या दिया। हमारे यहाँ बाजे इलाकों के अंदर पूरे के पूरे खानदान, चारों भाई, चारों अपनी बीवियों के चारों भाई, चारे बच्चों के मामू, ये सब के सब आलिम और हाफिज है। हमने पूरी कारगुजारी सुनाई तो पूरा मजमा कहने लगा मौलाना हमारे यहाँ तो कोई ऐसा इलाका नहीं है, लेकिन हम भी अल्लाह करे कोई ऐसा मौका मिल जावे तो हम भी अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाएंगे। फिर हमने अतराब के जाम्बिया, माली और मोरितानिया वगैरह से कॉन्टेक्ट करके भाई यहाँ के बच्चों को आप बुला लो, वीज़ा का इंतज़ाम कर लो, खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कर लो। अभी अभी 2-3 दिन के बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं, लेकिन अभी ये रिपोर्ट आए कि अल्लाह का करम हो गया कि 300 बच्चे हाफिज कुरान हो गए। ये अल्लाह का निज़ाम कि जब आदमी मैं जैसे मैंने आपको सुनाया कि हाफिज साहब 1956 के अंदर पहली मरतबा पहुंचे तो लोग अपने इस कुर्ते पायजामा से अपने इलाके में दाखिल कराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मेहनत हुई मेहनत हुई मेहनत हुई तो 1972 के अंदर सुलेमान भाई मोमाया को वो मुतवल्ली नाकरियों का ये पहली सब के अंदर जो 15-16 बच्चे नजर आते हैं सब के सब हाफिज कुरान। तो कितनी मेहनत। और उसके बाद दोस्तों बुजुर्गों उन्हीं के अभी तो इंतकाल हो गए 2-3 साल पहले, लेकिन उनके जमाने के अंदर हमने सुना कि माशाल्लाह छुट्टियों के अंदर स्टूडेंट स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्कूल के तालिब इल्म और पढ़ने वाले स्टूडेंट उनकी जमातें पूरी दुनिया में 200 मुल्क है और पूरी दुनिया के अंदर स्टूडेंट की जमातें इंग्लैंड से पूरी दुनिया में जाती है। जहां एक दिन वो माहौल था कि कुर्ता पायजामे के साथ दाखिल नहीं हो रहे थे, आज अल्लाह पाक का करम हो गया कि वही स्टूडेंट पूरी दुनिया में दावत की मेहनत को लेकर जा रहे। तो मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारी दावत की मेहनत की बुनियाद तो फिकर है, कि जब आदमी फिकर करता है तो फिर अल्लाह पाक ये माहौल को बना देते। और दूसरी बात यह है कि जानो माल की कुर्बानी। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर ये फरमाया यमवालिकुम अनफुसिकुम, जब आदमी अल्लाह के दीन की मेहनत का काम करता है तो फिर अल्लाह पाक दोस्तों बुजुर्गों उसके हाथों से, लेकिन शर्त यह है कि अपनी जान माल की कुर्बानी के साथ हम अपने आप को आगे बढ़ावे। मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आए, एक आदमी कहने लगे मौलाना जिसकी मुकद्दर में हिदायत होगी अल्लाह पाक हिदायत दे देंगे, या आप जब देखो तब चलो 4 महीने, चलो साल, चलो चिल्ला, हर महीने 3 दिन, रोजाना के 2.5 घंटे, आप इतनी मेहनत क्यों करते, जिसकी मुकद्दर में हिदायत होगी अल्लाह पाक दे देंगे। तो मौलाना उमर साहब थे भाई, उन्होंने कहा कि हाँ बात तो तेरी बिल्कुल सही है, जा ये निजामुद्दीन की मार्केट में जाकर ऐलान कर दे भाई, सब दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में चले जाओ, जिसकी मुकद्दर में रोजी होगी अल्लाह पाक पहुंचा देंगे। आदमी कहने लगा मौलाना ये कैसे होगा, अरे भाई दुनिया तो दारुल असबाब है, सबब के साथ चली है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मुकद्दर की रोजी अल्लाह पाक देंगे, लेकिन आदमी को दुकान तो खोलनी पड़ेगी। तो मौलाना ने भी ये कहा, हम भी तो यही कहते हैं कि भाई मुकद्दर की हिदायत तो अल्लाह पाक देंगे, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से तय शुदा बातें, वल्लजीना जाहदू फीना, जो जितना मुजाहिदा करता रहेगा अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत आती रहेगी। और मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अपने बयान के अंदर बहुत सी मरतबा कहते थे, अगर सिर्फ हिंदुस्तान की हिदायत का मसला होता तो अल्लाह पाक कब से बोलो दुनिया में हिदायत को दे देते, इतनी कुर्बानियां लोगों ने दे दिए, कितने लोगों के घरों में तलाकें हुई, कितने लोगों ने अपने कारोबार को उजाड़ा है, कितने लोगों ने अपने जज्बा, हमारे मौलाना इस्माइल साहब कई मरतबा सुनाते हैं, हमारे हाजी मूसा बाबर धीरे धीरे करके अपने पैसे जमा करते थे। इनके यहाँ छत नहीं थी और बरसात के दिनों के अंदर पानी टपकता था। इन्होंने तय किया कि इतने रुपए जमा हो जाएंगे तो मैं अपने यहाँ स्लेब डाला दूंगा। लेकिन कई साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे और कई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं कहा कि हाजी मूसा, एक तकाजा आया है एक मुल्क का और आपको जाना है। तो हाजी मूसा बाबर ने कहा, ठीक है कई साहब, आप जो कह दो। मैंने तो ये पैसे जमा किए कि मेरे यहाँ छत नहीं है और मेरे बीवी बच्चे इसी बारिश के पानी के दरमियान के अंदर पूरी रात इधर उधर होते रहते, तो मैंने कुछ पैसे जमा किए ताकि अपनी छत बना ले। कई साहब ने कहा कि वो तो अल्लाह पाक मुकद्दर में होगा तो दे देगा, लेकिन इस वक्त के अंदर आपकी ज़रूरत ये है कि फलां मुल्क में आप चले जाओ ताकि अल्लाह का दीन वहाँ जिंदा हो जाए। तो लोगों ने दोस्तों बुजुर्गों ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी और इसके नतीजे पर अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में ये जो दावत की मुबारक मेहनत है और अल्लाह पाक की तरफ जो सिफात के बेखा जो चीज़ हमने पढ़ी है भाई, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। लेकिन जब हम चलते हैं फिरते हैं और अल्लाह के रास्ते में जब निकलने के बाद जब वाकई में अल्लाह पर भरोसा करते हैं और दुआओं की ताकत दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के रास्ते में जाकर महसूस होती है। अभी तो हमने सुना है और पढ़ा है, उद्उनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूंगा। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों जब मौका आता है और जब हालात आ जाते हैं और ऐसे वक्त के अंदर जब आदमी दुआ मांगता है और अल्लाह पर कबूल कर लेते हैं फिर उसका यकीन बढ़ता रहता है। हम लोग एक मरतबा वेस्ट इंडीज के अंदर गए, कोई वही ट्रिनिडाद के अंदर एक इज्तिमा हो रहा था और बिल्कुल करीब वक्त था कि जल्दी से जल्दी पहुंच जावे ताकि इज्तिमा में शिरकत हो जाए और इज्तिमा में पूरा मुल्क जमा होगा तो अपना आगे के 4 महीने का निज़ाम सही होगा। तो जल्दबाजी के अंदर हम लोग गए तो हम 6 आदमी थे तो 3 टिकटें 3 महीने की और 3 टिकटें 4 महीने की। अब उसने ऊपर नीचे 4 महीने के टिकट रख के हमको दे दिया। अब हम तो पहुँच भी गए उस मुल्क में, फिर वहां जाकर देखा तो भाई 3 टिकटें तो 3 महीने की है और अपनी जमात तो 4 महीने की होती है। ट्रिनिडाद काम करते करते हम लोग बारबाडोस पहुंचे। हमारे एक साथी कहने लगे, मौलाना 80 दिन हो गए, अब चलो अपने वापस चले जावे, इसलिए कि 90 दिन के अंदर अंदर नहीं जाएंगे तो फिर उस वक्त के अंदर तकरीबन 80,000 से भी ज्यादा की टिकट थी, वो कैसे लेकर आएंगे। मैंने कहा भाई अपने तो 4 महीने की नीयत से आए हैं, अगर टिकट वो भी हो गई कैंसिल हो जाएगी तो अपने मजदूरी करके कमा कर 4 महीने पूरे करके जाएंगे, लेकिन अपने तो 4 महीने के लिए थे। वो कहने लगे, मौलाना तुम बहुत जज्बाती। अरे भाई जज्बाती की बात नहीं है, बुजुर्गों की तरफ से हमको भेजा। मैंने कहा इतना करेंगे कि अपने एयर फ्रांस से आए तो अपने जाकर थोड़ा मालूम कर ले। तो हम गए बड़बड़ भी हाई सब, चलो मैं अंग्रेजी जानता हूँ मैं बात करूँगा। अच्छा चलो हम लोग गए वहाँ जाकर, हमने कहा कि भाई इस तरीके से भूल हुई है, हमारी जमात तो 4 महीने की होती है और हमने पूरे पैसे दिए, 3 महीने की टिकट भूल से हो गई है, अब वो आप उसको 4 महीने बना दो। तो कहने लगे भाई ये तो हमको हमारे पेरिस के अंदर जो मेन ऑफिस में वहाँ पूछना पड़ेगा, एक हफ्ते के बाद आपको जवाब देंगे फैक्स के जरिए से, बहुत पहले की बात है। तो भाई साहब कहने लगे कि अब कैसे करेंगे। मैंने कहा 8 दिन इंतजार कर लो। बोले 8 दिन के अंदर तो 90 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर क्या होगा। अब हमारे एक साथी को हमने कहा, वहाँ एक बुजुर्ग थे, भाई हम भी बहुत उसमें आ गए, हमारे भाई साहब कहते हैं कि जल्दी से कोई मसला निमट जावे और हम टिकट बनाने के लिए गए, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपको जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि एक अमल तुमको बतलाऊं, फिर उन्होंने नूरुल इज़ा निकाली और उसके हाशिए में लिखा हुआ है कि 14 सजदे की आयत, 14 आयतें पढ़ लो, 14 सजदे कर लो और इस्तिमाई दुआ मांग लो, अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। अब वो तो भाई साहब तो बहुत, अब ऐसे मौके पर हमको यकीन होता है कि भाई जब अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे लिए काफी हो जाते हैं। अब वो भाई साहब ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी वजू करो, मौलाना 14 सजदे की आयतें बताओ, 14 सजदे की आयतें पढ़ी, 14 सजदे किए और इस्तिमाई दुआ मांगी। और 2 या 3 दिन नहीं हुए थे कि वहां से हमको कि भाई आपको एयर वाले बुलाते हैं, ऑफिस वाले। हमने कहा चलो, उन्होंने यूं कहा कि हमने वहां से फैक्स मंगवाया, आपका फैक्स आ गया, आपकी 6 के 6 टिकटें तो 3 महीने की थी ये 4 महीने तो हमारी भूल हो गई, वरना आपकी टिकट के जितना अमाउंट हमने लिया है वो तो 3 महीने का लिया है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जो थी कि भाई 4 महीने की हमको टिकट बनानी है और आपकी भूल हो गई, असल तो 3 महीने की टिकट थी, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पर हमने आपकी टिकट के 1 महीना बढ़ाकर 4 महीने उसकी मुद्दत कर दी। फिर उन्होंने दूसरी कि भाई आपकी तारीख चेंज हो गई तो हमारे यहाँ $50 लेते हैं, लेकिन हम आपकी दरख्वास्त के ऊपर ये $50 भी नहीं लेंगे, और फैक्स वो भी मेरे पास पड़ा है। और तीसरा उन्होंने लिख के ही दिया कि भाई अगर अभी भी आपको अपनी डेट चेंज करनी है तो विदाउट पे हम आपकी डेट को चेंज कर देंगे। अब जब जब हालात आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते फैजा अजमत फतवक्कल अल्लाह, अगर तू किसी बात पर पुख्ता हो जावे तो फिर अल्लाह पर भरोसा कर, और अल्लाह पाक का वादा है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा भरोसे के लिए कौन काफी हो जाएंगे, अल्लाह काफी। अब ये जब हालात आते हैं और जब आदमी जब चलता फिरता है फिर कोई चीज आ जाती है, फिर उसकी दुआ में जो ताकत आ जाती है तो फिर आदमी का यकीन बनता है कि वाकई में काम करने वाली जात तो बोलो किसकी है, अल्लाह। जो चीज हमने पढ़ी है जब चलेंगे फिरेंगे हमारे फजले करीम के मुताबिक, माशाल्लाह अहमदाबाद के ही थे, हमारे छोटा भाई ने हमको सुनाया, एक मरतबा काई साहब ने तय किया, मौलाना असगर साहब नंदासन वाले और फजले करीम इन दोनों का तय हुआ कि आपको बंबई जाकर किसी तकाजे को पूरा करना है, दावत का कोई तकाजा था। तो मौलाना असगर साहब आए मलिक अहमद की मस्जिद में और भाई फजले करीम भी वहां मौजूद थे, बोले अपने दोनों का तय हुआ है चलो अपने को बंबई जाना है। मौलाना असगर साहब ने कहा मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो फजले करीम कहने लगे मेरे पास भी कुछ भी नहीं, तो फिर कैसे चलेंगे, तो बोले मलिक अहमद की मस्जिद से कालूपुर स्टेशन तक तो पैदल जा सकते हैं, उसमें तो पैसे नहीं लगते। अरे बोलो, अब देखो ये अल्लाह, अब जब आदमी रगड़े खाता है अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो वो तमाम सिफात का यकीन हमारी जिंदगियों में आता है। अब ये दोनों चले, मलिक अहमद की मस्जिद से रेलवे स्टेशन पहुंच गए, फिर मौलाना असगर साहब ने कहा फजले करीम से चलो, वह आपने कहा तो यहाँ तक पहुंच गए, तो फजले करीम ने कहा भाई लाइन में खड़े रहने के कहाँ पैसे लगते, अरे बोलो लगते, हमारे सूरत में तो नहीं लगते, आपके अहमदाबाद में लगते नहीं, लाइन में तो कोई भी खड़ा हो जाए, कहीं टोकन देते हैं लेकिन फ्री। अब ये दोनों खड़े हो गए, थोड़ी देर के बाद मौलाना असगर साहब कहने लगे कि फजल जी जेब में तो पैसे है नहीं और बम्बई की टिकट की लाइन में खड़े हैं, लोग हमको बेवकूफ़ कहेंगे चलो। तो फजल करीम का यकीन तो अल्लाह पर था, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, फजल करीम कहने लगे आखिर तक जाने में अपने को कहाँ पैसे लगे। अब यूं करते 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 आखिर तक पहुंचे, अब बिल्कुल एक आदमी के बाद इनका नंबर है। अब मौलाना असगर साहब ने फिर कहा कि फजल जी अब चलो निकल जाओ, लेकिन भाई अल्लाह का निजाम है कि आखिर तक आदमी अल्लाह पर भरोसा करे। तो फजल करीम ने कहा एक आदमी के बकदर चलने में क्या तकलीफ है, और बोलते ही कहेगा कि चलो निकल जाओ लाइन में से तो निकल जाएंगे। बस वही वक्त होता है कि वो आखिरी आदमी, इसने देखा कि कोई बुजुर्ग है दो और ये भी बम्बई जा रहे हैं और उसके दिल में भी अल्लाह ने बात डाली, तो बजाय एक की 3 टिकट ली, मालूम है पहले वो पुट्ठे की टिकट अलग अलग आती थी 1 2 3 वो ठक ठक ठक, तो वो फौरन 3 टिकट लेकर पीछे मुड़कर फजले करीम के हाथ में देकर यूं कहा कि फजले करीम मेरी तरफ से 2 हदिया है। फजले करीम कहने लगे हम भी तो लाइन में खड़े हैं, अबे जेब में तो कुछ भी नहीं हो लाइन में खड़े हैं, लेकिन यकीन अल्लाह की जात पर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी तरफ से कबूल कर। तो जो आदमी अल्लाह के वादों पर यकीन, ऐसे जितनी भी वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु, जितनी अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर वादे फरमाए, वो दोस्तों बुजुर्गों जब आदमी चलेगा फिरेगा देखेगा सोचेगा और हालात आ जाएंगे, ऐसे वक्त के अंदर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक बोलो मसले को हल कर देगा। कि ये दावत की मुबारक मेहनत के जरिए से इस बात की मेहनत हो रही है कि जो कुछ हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे कि भाई इस दावत की मेहनत के जरिए से चाह जाता है कि जो नुकूस हमने पढ़े हैं वो हमारे नफूस में आ जावे, वो हमारे जिंदगियों में आ जावे। और वो तो दोस्तों बुजुर्गों भाई चलता फिरता कुरान था, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اگر کسی کو متقی دیکھنا ہے تو کس کو دیکھ لو بولو؟ قرآن کتاب میں تو ہے ہی جو کچھ ہے، لیکن ان کی خود کی زندگی ایسی اپنے آپ کو بنائی تھی کہ اگر کسی کو متقی دیکھنا ہے تو بولو، اور کسی کو دنیا سے بے رغبت ظاہرانی دنیا دیکھنا ہے تو بولو ابو ذر غفاری کو دیکھ، کسی کو اگر سخاوت دیکھنی ہے تو بھائی عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے دوستو بزرگوں کہ جو چیزیں کتابوں میں موجود ہے اللہ کرے اور جتنے ہماری زندگی میں ہوگا بولو ہمارے پیچھے چلنے والوں کی زندگی میں اللہ پاک منتقل کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق میں دو پتھر باندھے تو عام صحابہ کرام کا ایک پتھر کا باندھنا بولو آسان ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آئے، آپ نے اپنے 9 گھروں میں تحقیق کروائی، ایک آدمی کے بقدر کھانا نہیں تھا، پھر آپ نے اعلان کیا بھائی ان فلان ساری کی مہمان نوازی کون کرے گا، تو پھر صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اپنے گھر لے گئے اور اتنا کھانا کہ جو بچوں کے قابل تھا ان کو پھسلا کر سلا کر میاں بی بی بھوکے رہے، اور اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ کب ہوا؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نمونہ پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کرتے تھے تو عام صحابہ کرام کا آدھی رات کا عبادت کرنا، ارے بولو. تو دوستو بزرگو اللہ پاک نے ہم کو بھی نمونہ بنایا، ہم کو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بنائے. جو ہماری زندگی ہوگی، ہم نے دیکھا ہمارے مفتی صاحب خانپوری دامت برکات ان کو کہ 11 بجے آ جاتے جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں، کتنے بجے؟ 11 بجے. تو ان کے جتنے شاگرد تھے، ہم نے دیکھا ہماری مسجد میں مفتی عبید اللہ وغیرہ، ہم نے دیکھا ان کو جہاں بھی طے ہوتا ہے بہن وہ بھی 11:30 بجے تو آ ہی جاتے. کیا ہوا کہ بھائی بڑوں کی زندگیاں دیکھ رہی. جب آدمی نمونے کے طور پر اپنا آپ کو بنائے گا تو پھر اللہ پاک پیچھے والوں کو توفیق عطا فرمائیں گے. ہم نے دیکھا کہ جو مسجد کے امام صاحب گشت کے اندر آ جاتے ہیں اس مسجد کے عمومی مجمع بھی بولو ماشاء اللہ. ایک علاقے میں ہم گئے، فجر کی نماز میں 80 آدمی تھے، 78 آدمی مسجد وار جماعت میں بیٹھے. میں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہو گئی، تم بھی وہی 30-25 روپے کلو کے گیہوں کھاتے ہو اور 50 روپے کلو کے چاول کھاتے ہو، ہم بھی تو وہی پیسے سے کھاتے ہیں، لیکن ہماری مسجد میں تو اتنا بڑا مجمع نہیں بیٹھتا، 100 آدمی ہیں تو 20 آدمی بیٹھتے ہیں، 80 آدمی چلے جاتے ہیں، اور تمہارے یہاں 78 آدمی بیٹھتے ہیں، 80 میں سے 2 آدمی چلے جاتے ہیں. میں نے اس مسجد والوں کو پوچھا، انہوں نے بڑی عجیب بات سنائی، بولے گھوڑ کی بات سناؤ. میں نے کہا سنا دو. وہ کہنے لگے ہمارے امام صاحب بیٹھ جاتے، تو جس مسجد کے امام صاحب بیٹھ جائیں گے اس مسجد کے عوام بھی بولو. ارے بھائی اللہ پاک نے ایک اثر رکھا ہے، علم کا اثر ہے، دعوت کا اثر ہے، تقوی کا اثر ہے. اور ماشاءاللہ رات دن ہمارے قائد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ورنہ یہ ذمہ داری تو ہم میں سے ہر ایک کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان علماء کرام کا احسان ہے کہ وہ اپنا وقت فارغ کر کر تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تب تم کاروبار دین کی محنت اور دنیا کا کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ ذمہ داری اللہ پاک نے ہر انسان ہر مومن کے ذمہ رکھیے کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کو بیوی بچوں سے آنکھ سے بچاؤ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی ان کو دین سکھلاؤ. تو یہ تو دوستو بزرگو آپ لوگوں کا بہت بڑا احسان، لیکن اس وقت کے اندر امت کو ضرورت ہے. امت کو میں نے آپ کو سنا ہے، مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی کوئی بڑا شہر، کوئی بڑا صوبہ، کوئی بڑا قصبہ ہی بتلا دو کہ جس پر نماز زندہ ہو گئی. ابھی تو صرف نماز 100% زندہ نہیں ہوئی. ہم تو کہتے ہیں کہ 300 گھر ہے، 600 بالغ مرد ہے، اور ہم پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنے، تو آدمی منہ بھر کے کہتا ہے 120 آدمی. ارے بھائی 120 آدمی، 600 میں سے 120 آدمی تو کتنے فیصد ہوا؟ ارے بولو 20%. اگر 60 آدمی آوے تو 10%، اور 120 کا مجمع آوے تو بولو. لیکن آدمی جیسے راہ پور کر کے آدمی پڑھ منہ بھر کے، ایسے 120 آدمی. ارے بھائی 120 آدمی آ گئے لیکن 480 آدمی تو باقی رہ گئے، ان پر کون محنت کرے گا؟ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں چاہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے زمانے کے اندر ایسی عام محنت ہو گئی کہ ایک 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 آدمی غیر حاضر ہے فجر کی نماز میں، लेकिन आप फिक्र करने में कि क्या बात है सुलेमान मस्जिद में नजर नहीं आती। एक आदमी के लिए गए, जाकर पूरी तहकीक हुई और उसके घर गए, ये नहीं कि किसी को भेज दिया बल्कि खुद गए। ऐसे दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह करे, अल्लाह करे हमारे यहाँ अल्लाह पाक ऐसा माहौल बना दे। लेकिन उसके लिए वही बातें जो मौलाना सईद अमर खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारी दावत की मेहनत की बुनियाद तो तीन है, एक तो फिक्र, दुआ और तीसरी जान माल की कुर्बानी। हमारे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर हिंदुस्तान का मसला होता तो अल्लाह पाक कब से भी हिदायत दे देते, लेकिन ये तो पूरे आलम का मसला है और अल्लाह पाक ने जिम्मेदारी हमारे तमाम के कंधों पर रखी है। इसलिए ये हमारे बुजुर्गों की तरफ से एक तरतीब है कि भाई जो फारिग होने वाले उलमाए किराम है उनके लिए कितना है बोलो, अरे बोलो। एक आदमी मौलाना उमर साहब के पास आया और आकर कहने लगा, मौलाना ये क्या आपने उल्टा निसाब कर दिया, उलमाए किराम के लिए साल और अवाम के लिए चार महीने, होना ये चाहिए कि अवाम के लिए साल लगाते और उलमाए किराम के लिए चार महीने, भाई क्या बात होगी। बोले तो पढ़ते हैं 8 साल 10 साल 12 साल कुरान हदीस तफसीर तो सब पढ़कर आए, ये तो बेचारे इतिहास से खेत से आते हैं, तो होना तो क्या चाहिए, दीन की मेहनत तो इनके ऊपर ज्यादा करनी चाहिए, इनको ज्यादा वक्त लगाना चाहिए। मौलाना उमर साहब तो मौलाना उमर साहब थे, मौलाना उमर साहब कहने लगे कि उलमाए किराम सारी दुनिया के इंजन है और आवाम ये तो डिब्बे हैं, इंजन का एक एक स्क्रू सही होना चाहिए, एक एक उसका वायर सही होना चाहिए, अगर कहीं एक वायर भी आगे पीछे हो गया या एक स्क्रू भी ढीला हो गया तो बोला इंजन चलेगा, और अगर इंजन अटक गया तो इसके पीछे के डब्बे सब अटक, और डिब्बे में अगर किसी की डिब्बे में सीटें फटी हुई है, पंखा बंद है, कोई विंडो का कांच टूटा हुआ है तो बोलो तो चलेगा। कहने लगे उलमाए किराम तो सारी दुनिया के इंजन है, इनका तो एक एक स्क्रू सही होना चाहिए और एक एक पुर्जा इनका सही होना चाहिए। इसलिए मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में ये बातें आती थी, लेकिन बुजुर्गों ने खोल खोल के रख दी कि भाई उलमाए किराम का निसाब तो कितना है बोलो, अरे बोलो ना। मुसब इब्ने उमेर ने मदीना मुनव्वरा जाकर कितना लगाया वक्त, 1 साल, और 1 साल के नतीजे में अल्लाह पाक ने कैसा माहौल बनाया, जबकि गए तो कुछ भी नहीं था, और 1 साल लगाने के बाद लिखा है किताबों के अंदर कि मदीने मुनव्वरा के अक्सर घरों के अंदर अल्लाह पाक ने इनकी बरकत से इस्लाम को दाखिल कर दिया। बल्कि कितनी अजीब बात थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मदीना पहुंचने वाला था तो अंसार की बच्ची आकर इंतजार में रहती थी, और जिस दिन अल्लाह के नबी को देखा तो क्या पढ़ रही थी बोलो, तलाल बद्र अलैहि, हालांकि आपको देखा नहीं था, लेकिन मुसब इब्ने उमेर की मेहनत से अल्लाह के नबी को पहचान करके इस अंदाज के अंदर उन्होंने कि भाई 14वीं रात का चांद तुलू हो गया, क्या मतलब, इतना तारुफ हो गया है कि अल्लाह के नबी जब आएंगे हम इंशाल्लाह उनकी पूरी बात को सुनेंगे। तो ये 1 साल जो अल्लाह पाक की तरफ से निसाब, ये बुजुर्गों की तरफ से कुरान हदीस की रोशनी के अंदर अल्लाह पाक ने 1 साल मुतय्यन किया है। और दोस्तों बुजुर्गों, ये नहीं है कि चलो आज के आज साल चले जाएंगे, लेकिन नियत करें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अल्लाह पाक साल के लगाने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग जब निजामुद्दीन में थे तो मगरिब की नमाज के बाद साल वाले उलमाए किराम की बात होती है, मालूम है आप लोगों को। नीचे एक मरतबा एक बड़ी उम्र के भाई साहब आए, 60 साल के। मैंने कहा भाई साहब आपके लिए तो मस्जिद में है। वो कहने लगे मैं तो यहीं बैठूंगा। मैंने कहा हाजी साहब ऊपर कारगुजारी का अमल होता है, आपके लिए ऊपर मस्जिद में। बोले मैं तो यहीं बैठूंगा। मैंने कहा भाई साहब आपके लिए ऊपर है, ये तो साल के उलमा के राम। बोले मैं भी साल लगाने के लिए आया, 60 साल की उम्र है लेकिन क्या लगा रहे बोलो। हम लोग एक मरतबा गए तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग आए। मैंने पूछा भाई साहब, बोले मैं साल लगाने के लिए आया। मैंने कहा आपके बाल तो माशाल्लाह सब मेरे से सफेद हो गए। कहने लगे मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूँ और मैंने इंतजामिया से साल की नियत करके रखी थी। मैं हर साल इंतजामिया से दरख्वास्त देता था कि भाई मेरे को 1 साल लगाने की छुट्टी दे दो, तो कहते थे कि बुखारी पढ़ाने वाले को तैयार कर लो, उसके बाद आपको छुट्टी कर देंगे। तो बोले होते 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 मेरा एक शागिर्द यहाँ तक पहुँचा कि माशाल्लाह इस साल उसकी इतनी इस्तेदाद है वो बुखारी पढ़ा सकता है। मैंने इंतज़ामिया में जाकर पेश कर दिया, देखो ये बच्चे ये बुखारी पढ़ा सकते हैं मेरे को। तो बोले मेरी जगह पर एक साल बिठा कर, अब मैं इस 52-54 साल की उम्र थी, बोले इस साल इस 54 साल की उम्र के अंदर मैं एक साल लगाने के लिए आया। तो ये तो अल्लाह का, ये नहीं कि चलो फारिग हो गए और एक दो 5-10 साल हो गए तो छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं। हमारे मस्जिद के इमाम साहब कहने लगे कि मैं फारिग होकर एक साल की नियत से गया इज्तिमा में, लेकिन किसी ने मेरे को पूछा नहीं, नया नया माहौल था। अभी इनकी उम्र तकरीबन 70-75 है और जवानी में गए होंगे आज से 50 साल पहले। तो कहने लगे मेरे को कोई ने पूछा नहीं, तो मैं अपना बिस्तर लेकर वापस आ गया और आज तक मैं तमन्ना करता ही रहा लेकिन मेरा निकलना मुश्किल हो गया। तो ये तो दोस्तों बुजुर्गों फारिग होने के साथ निकलना, इसके लिए ताकि अल्लाह पाक आसान कर दे। लेकिन अगर अगर मशगूली हो गई, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ा भी लिए, लेकिन अगर आदमी थोड़ी सी हिम्मत करके इस बात को तय कर लेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह की दया से उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम तमाम का साल लगाना आसान करेंगे। तो नियत तो हम सब करें कि इंशाल्लाह हम सब एक एक साल लगाएंगे। अरे लगाएंगे इंशाल्लाह, कौन कौन नियत करता है कि एक साल लगाएंगे, जरा खड़े होकर नाम लिखा दो अपना, आज नहीं तो कल, जब भी अल्लाह पाक मौका देवे। लेकिन नियत में हम सब रहेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देवे तो हम एक एक साल लगाएंगे।